Sí, bueno, claro. Han hablado de la red, se lo paso.
रूप में की गई है जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितमेध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि एक पौंड अर्थ लगभग आधा सिर खा सकता है तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पौंड ग्रहण करे, उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए, चौथाई पेट वायु में आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा और न कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां योगाभ्यास में कोई बाधा न पहुंचे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुवदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायी नाति नीचोदता रख हान मुंच मद कदाचिन मां प्रेमणा हृत कंठ सुर। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मीतमेध्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। तो सर्वप्रथम यहां पर उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करके उन सभी कृपा आशीर्वाद से हम भागवत के कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक को ऐसे शनिवार को भी लिया गया था, परंतु भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय प्रतिश्लोक प्रतिक्षर नाना अर्थ कहे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से बतलाए, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। तो भागवत का प्रत्येक श्लोक, भागवत का प्रत्येक अक्षर जिस प्रकार से वही श्री कृष्ण का श्री विग्रह होता है, परंतु नित नवीनता का अनुभव करवाता है भक्त के भाव के अनुसार, वैसे भागवत के अक्षर भागवत के शब्द स्वयं को प्रकाशित करते हैं भक्त की साधना के अनुसार। प्रकाशन्ते महात्मना, जिस प्रकार से पुराणों में उल्लेख है, जिस प्रकार की श्रद्धा जिस प्रकार की निष्ठा श्री कृष्ण के प्रति है, उतनी निष्ठा उतनी श्रद्धा जब साधु गुरु के प्रति हो तो भागवत वैदिक वांग में अपने आप को प्रकाशित करता है। क्योंकि वैदिक शास्त्र को केवल बौद्धिक क्षमता से ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए श्रुति मंत्र कहा गया नायमात्मा प्रवचेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि भगवत प्राप्ति या भगवत अनुभूति निज प्रयास से निज बल से निज बौद्धिक क्षमता आदि से नहीं की जा सकती है, स्वयं होके अनुग्रह के जब भगवान स्वयं को प्रकाशित करे तब वह प्रकट होता है। तो ये भागवत का तृतीय स्कंद भगवान कपिल देव का उपाख्यान जो प्रारंभ हुआ 25वें अध्याय से लगभग 33वें अध्याय तक यह प्रसंग यह उपदेश चल रहे हैं। कितना हुआ? लगभग 9 अध्याय। 9 अध्याय में भगवान कपिल देव उपदेश दिए। प्रथम माता देवहूति जिज्ञासा की किस प्रकार से संसार के बंधन से मुक्त हो जाए, तब प्रारंभ में ही पहले भक्ति मार्ग का वर्णन किया 25वें अध्याय में। परंतु भक्ति के प्रति सुदृढ़ निष्ठा होने के लिए आवश्यक है अन्य साधनों का भी जब ज्ञान हो, और अन्य साधन वह फल प्रदान नहीं कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष भक्ति मार्ग प्रदान करता है, इसलिए अन्य साधनों को भी जानना आवश्यक है। परंतु अन्य साधनों का भी अंततोगत्वा प्रयोजन भक्ति है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे वेदेश्च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेह चाहम। अंततोगत्वा जो जानने लायक विषय है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए 26वें अध्याय से मेरा ध्यान दे रहा था, अध्याय का जब शीर्षक देखा तो 26, 27, 28, 26 में सांख्य, 27 में लगभग ज्ञान और 28 योग, ये 3 अध्याय का अगर सार रूप में विभाजन कहा जाए, और 29 में फिर भक्ति का वर्णन किया गया। सांख्य विश्लेषण 26वें अध्याय में हुआ, 27वें अध्याय ज्ञान मार्ग का कुछ वर्णन किया गया है, और 28 यहां पर योग मिश्र भक्ति आप कह सकते हैं, सांख्य मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र। और फिर 29वें अध्याय में फिर भक्ति का वर्णन किया जाएगा। परंतु शिल प्रभुपाद जब उसी अध्याय को प्रस्तुत कर रहे तो लगभग शिल प्रभुपाद का प्रयोजन यह था, जैसे शिल प्रभुपाद एक स्थान पर कहे भी इस बात को कि शिल प्रभुपाद जो ग्रंथ प्रदान किए, यदि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को अपने जीवन में स्वीकार करे और इस इन ग्रंथों के एक पन्ने को भी पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से वह कृष्ण भावना वाहित बन सकता है। शिल प्रभुपाद सभी को घुमा फिरा के बराबर भक्ति निष्कर्ष में लेकर आते थे। तो यहां पर श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलये साधनानुष्ठानम नाम अष्टाविंशोऽध्याय। जैसे अध्याय का शीर्षक भागवत में मूल दिया गया साधनानुष्ठान, और आचार्य जब व्याख्या किए तो वहां पर कहा गया 28वां अध्याय मतलब योग के, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि। तो धारणा के लिए धारण करना, जब भगवान को हम धारण कर पाए, अभी हमारा अनुभव यह है कि हम जब भक्ति मार्ग में भी लगते हैं, भगवान में मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान तो बहुत ही विरला, ध्यान के समाधि ध्यान के पूर्व धारण आता है। धारण मतलब जो आध्यात्मिक भगवान का नाम रूप गुण लीला को मन पकड़ने जब लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी तो नाम रूप गुण लीला प्रारंभ होता है तो मन पकड़ता नहीं है, मन को एलर्जी होती है। श्री सनातन गोस्वामी के शब्द में हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि जिस प्रकार से जब कहते हो काजल को जब बनाया जाता है तो किस तरह बनाया जाता है, तो वहां पर वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी हरिभक्त स्वामी की, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सल्फर, हाँ गंध, सल्फर और मर्क्यूरी, क्या पारा पारा। तो कहते हैं कि सल्फर और मर्क्यूरी का जब मिश्रण किया जाता है और मिश्रण का जब घर्षण किया जाए तो उससे फिर ये एक पद्धति है उस काजल को बनाने की, जिसको अंजन को जो नेत्र में लगाया जाता है। परंतु अनुभव यह है कि उस सल्फर और मर्क्यूरी जब अगर मिश्रित करने का प्रयास करें तो मिलते नहीं है सहजता से, तो क्या किया जाता है, कहते हैं जो कहते पत्थर होता है ना, वो जो चटनी जो बनाते हैं कौन डाला एक पार्ट होता है उसके ऊपर वो, हाँ समझ गए आप समझ गए, तो उसमें उसको रख के फिर बहुत घिसा जाता है, मिलता नहीं है फिर भी घिसा जाता है, और बहुत बहुत दीर्घ काल तक जब उसको घर्षण करते हैं तो फिर धीरे क्रमशः धीरे धीरे वो मिल जाते हैं और मिलकर फिर एक रूप हो जाते हैं। तो जैसे सल्फर और मर्क्यूरी का प्रारंभ में पारा और गंध का मिलना सहज नहीं है, वैसे कहा जाता है कि जब कलुषित मन है इस संसार के कलमश से जो युक्त है मन, वह कृष्ण का नाम रूप गुण लीला को धारण नहीं कर पाता है। तो इसलिए अनुभव है कि जैसे नाम रूप गुण लीला प्रारंभ हो तो पहली चीज की तुरंत जिस प्रकार से कुछ रुग्ण अवस्था में किसी व्यक्ति को जब कुछ एलर्जी होती है, जैसे हमारे मधुपति को धुएं की एलर्जी है, ऐसे अलग वक्त हो जाएगी कि कभी धूल कुछ हो, कोई धुआं हो, कुछ विशेष प्रकार के कुछ किसी वस्तु से उनकी एलर्जी होती है, वो होते बराबर वो असहनीय हो जाता है। तो वैसे ही सनातन गोस्वामी कहते कि बद्ध अवस्था में जब मन कलुषित होता है तो आध्यात्मिक नाम रूप शब्द से, भगवान की कथा से, भगवान के रूप से एलर्जी होती है। मतलब जैसे ही वो प्रारंभ हो तो तुरंत पहला लक्षण होता है कि मन विक्षेप करता है, विक्षेप मतलब तुरंत मन अन्य विषय की ओर दौड़ने का प्रयास करता है, और दूसरा है कि तुरंत वह मन फिर एक तो विक्षेप या फिर दूसरा लय कहा जाता है। लय अर्थात तुरंत वहां निद्रा को प्राप्त कर लेता है। तो निद्रा मतलब जैसे कल कुछ भक्त हम चर्चा कर रहे, तब किस भक्त ने कह दिया कि यदि पर्याप्त निद्रा न हो तो संभावना रहती है कि साधना में नींद आती है, परंतु साधना में जो नींद आती है वो कभी शरीर की नींद नहीं होती है। साधारण तौर पे प्रमुख रूप से भक्ति ने ठाकुर से कहे लय अर्थात पूरा आपकी नींद भी हुई हो, शरीर पूरा स्वस्थ भी हो, फिर भी जैसे ही आप नाम जप करते, जैसे कथा श्रवण प्रारंभ करते, जैसे भागवत का पाठ प्रारंभ करते हैं, उसी क्षण जब कुछ अनर्थ हो तो वो अनर्थ उस रूप शब्द को ग्रहण नहीं करने देते हैं, ऐसा अनुभव देखा गया है। तो इसीलिए मन को पवित्र करने के लिए, उस मतलब भगवान को हम धारण कर सके अपने मन में, उसके लिए आवश्यक है कुछ विशिष्ट प्रकार के अंगों का पालन करना। तो उसी का वर्णन है यहाँ पर इस 28वें अध्याय में किया गया है। हालांकि योग की दृष्टि से वर्णन किया गया, परंतु शिला प्रभुपाद जब इसको प्रस्तुत कर रहे तो भक्ति की दृष्टि से प्रस्तुत किए, इसलिए शिला प्रभुपाद इस अध्याय का शीर्षक रखे भक्ति साधना के लिए कपिल के उपदेश, जबकि था योग के लिए, प्रभुपाद ने शीर्षक ही बदल दिया है, भक्ति साधना के लिए, भक्ति के लिए जो विशेष रूप से उपदेश दिए गए हैं तो उसको यहां पर वर्णन किया है भगवान कपिल देव ने। योगस्य लक्षणम वक्षे, कि योग के लक्षण कहा गया है योग पद्धति के, परंतु उसको श्रील प्रभुपाद भक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज भी अपने एक प्रबोधन में इस बात को उल्लेख किए हैं कि भगवद गीता का 6वां अध्याय है, अष्टांग योग का वर्णन किया गया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि, परंतु उनका प्रयोग विशेष से साधक भी करते हैं, उनके लिए भी वहां आवश्यक है। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य अनुपात्मजे, मनो येन एव विधिनः प्रसन्नम याति सत्पथम, येन एव जिस विधि से मन को दो परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षण ऐसे क्रियाओं को करने से मन दो परिणाम को प्राप्त कर, प्रथम परिणाम है प्रसन्नम याति सत्पथम, प्रथम है कि मन प्रसन्न हो जाता है उस आध्यात्मिक अनुभूति को करके, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए, भागवत में सके कि मन सहज प्रसन्न होने लगता है, और फिर याति सत्पथम, याति सत्पथम का प्रयोजन से कई प्रकार से अर्थ बदला जाता है। सत्पथम मतलब प्रमुख रूप से भगवान की और मन सहज प्रवाहित होने लगता है, जैसे गंगा का प्रवाह होता है गंगई वौघम उदनवती, कुंती महारानी कहिए, जैसे गंगा सहज प्रवाहित होती है वैसे सहज मन भगवान की ओर कैसे प्रवाहित हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं को यहां पर दिया गया है, लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सात श्लोकों में भगवान कपिल देव यम और नियम का वर्णन किए हैं। तो इसके पूर्व के श्लोक स्वधर्मेण स्वधर्म आचरण शक्त्या विधर्मश्च निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मवित चरण अर्चनम, चार साधन पहले बताए गए यम के, क्षमा कीजिए नियम के, 2, 3, 4 यह श्लोक नियम का वर्णन करते हैं और 5, 6, 7, 8 ये यम का वर्णन करते हैं। यम अर्थात निषेध, सरल शब्द में स्मरण रखना है यम मतलब क्या, तो कहा जाता है कि जिन कार्यों को करने से यमराज के दर्शन होते हैं उनको यम कहा जाता है, निषेध है। और नियम मतलब जो करणीय है, तो कौन कौन से करणीय बातें हैं उसको पहले रखा गया है। स्वधर्म आचरण शक्तिया, धर्म का शब्द का उपयोग दोनों ओर किया गया, दूसरे श्लोक में भी तीसरे श्लोक में भी है। तो पहले होता है स्वधर्म आचरण शक्तिया, जो निज धर्म है निज कर्तव्य है उसको करने के लिए भगवान पुनः पुनः कई बार प्रोत्साहित किए, श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्म भयावह, कि जो निज धर्म होता है उस निज धर्म को करना चाहिए विधर्म च निवर्तनम। तो फिर से वैसी बात यहां पर भी कही गई, दूसरे श्लोक में क्या स्वधर्म शक्तिया आचरण शक्तिया और विधर्म च निवर्तनम, जो विधर्म है उसको उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए जो शास्त्र में अनुमोदित नहीं है। और फिर दो बातें, दैव लब्धेन संतोष यति आवश्यक है, जो मन को प्रसन्न रखना चाहता है, जो मन को सहजता से भगवान की ओर प्रवाहित करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है। प्रथम बात है कि दैव लब्धेन, दैवालब्धेन संतोष, भगवान वामन देव इस बात को कहे हैं, यदृच्छया लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। जब बलि महाराज के समक्ष वे गए, बलि महाराज ने उस ब्राह्मण के प्रचंड तेज को देखा जिसने संपूर्ण उस नर्मदा नदी के तट पर एकत्रित ऋषि मुनियों के सभी के मन को आकर्षित कर लिया था। नन्ना सा बालक था परंतु ऐसा तेज, इतना तेजस्वी छोटा सा बाल ब्रह्मचारी जिसको देखकर सबका मन आकर्षित हो गया। बलि महाराज ने यथावत उनका सत्कार किया, आसन आदि अर्पित किया उन्हें, और तब उनसे कहा कि हे ब्राह्मण मैं क्या आपकी सेवा करूं। और तब बहुत सुंदर शब्दों में पहले तो बलि महाराज की स्तुति किए हैं भगवान वामन देव कि निश्चित रूप से आप जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए आपके कुल के अनुकूल है। प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद पुत्र ऐसे महान महान दानी और भगवान के भक्त हुए हैं और उन परिवार में उन वंश में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आपके शब्द आपके वंश के अनुकूल है। जहां तक मेरा प्रश्न है मुझे केवल तीन पग भूमि चाहिए। जैसे सुना तो वहां पर भगवान वामन देव की इस बात को सुनकर कहां गया, बलि महाराज हंसने लगे, ओ ब्राह्मण वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिशमिति स्वार्थ प्रत्युबुदो यथा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम तो बहुत ही जब बातें कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है बहुत वयोवृद्ध हो, बहुत बड़ों की तरह बात करते हो, परंतु जब आपने मुख खोला बोलना प्रारंभ किया तो कैसा भी पता चला, तुम बालो बालिशमति कि बच्चे हो और बुद्धि तुम्हारी बच्चों की तरह ही है, स्वार्थ प्रत्युबुद्धो यथा। वास्तविक तुम्हें कैसे किस व्यक्ति के सामने आए हो, किस व्यक्ति के सामने क्या मांगना चाहिए यह भी ज्ञान नहीं है। मां वचो भी समाराध्य लोकानाम एकमीश्वरम पदत्रयम वृणीते यो अबुद्धिमान द्वीप दाशुषम। मेरे सामने बात कर रहे हो, देखा देखना तो चाहिए किस व्यक्ति से बात करो। लोकानाम एकम ईश्वरम, कभी कभी अभिमान जब आए किसी व्यक्ति को पद प्राप्त हो जाए तो इतना अभिमान आता है कि उसको लगता है वास्तविक मैं ही सर्वे सर्वा हूं। तो लगभग वही भाव यहां पर बलि महाराज के मन में भी आ गया, लोकानाम एकम ईश्वरम, संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमेव नियंता मैं हूं। तो अभिमान में कभी कहते कहते इतना अधिक कह दिया उन्होंने, और मेरे सामने आकर क्या मांगा, पदत्रयम वृणीते यो अबुद्धिमान, ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, सिर्फ तीन पग भूमि मांग रहे हो। नपुमान माम उपव्रज्य भूयो याचित तुम्हारे कि क्या मांगना चाहिए तुम नहीं जानते हो, मांगो जितना मांगना चाहिए, तो तुम्हें मैं तीन पग क्या पूरा गांव गांव क्या राज्य राज्य क्या लोक दे सकता हूं, जितना धन है जितनी संपत्ति है गाय है और योग्य ब्राह्मणी विवाह के अनुकूल जो स्त्री है वह भी मैं प्रदान कर सकता हूं। तो उस समय वहां पर इस बात को वे कहे नहीं नहीं नहीं, वास्तविक त्रिविकम क्रमैर संतुष्ट द्वीपे नापि न पूर्यते, जो तीन पग में अगर संतुष्ट न हो उसको द्वीप भी दिया जाए तो उसकी संतुष्टि पूर्ण नहीं हो सकती है। सप्त द्वीपम अदितियो नृपा वैत्यान्न गादय अर्थे कामगता अमनांतम तृष्णायति न श्रुतम यद्रुच्छवापन्ने न संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट त्रिभिर्लोक रजितात्म उपसादित। कि जितना हमें प्राप्त हुआ है मतलब भगवान हमारे जीवन में जो व्यवस्था बनाए हैं भगवान, हमें जिस परिस्थिति में रखे भगवान, जिस स्थान में रखे भगवान, जो कुछ हमें प्रदान किए, वास्तविक जिस प्रकार से कहा जाता है, आपको इस मानव शरीर में भगवान श्री कृष्ण का भक्ति प्रदान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए जैसा अनुकूल स्थान चाहिए, जैसा अनुकूल वातावरण, जैसी परिस्थिति चाहिए, उसी में श्री कृष्ण आपको रखते हैं। जिस प्रकार से ये आप सदैव दृष्टांत सुनते भी कि एक पिता है, वो बालक को यदि 10 रुपए दे और 10 रुपए देने के पश्चात दो बालक है, एक बालक ने 10 रुपए दिया, गया और उसने बहुत अच्छे फल खरीद के लाए और पिता को अर्पित किए, दूसरे बालक को 10 रुपए दिए, उसने पूरा तरह से उड़ा दिया खेल कूद में, चाट पकौड़ा दिखाने में। प्रश्न है कि अब अगले समय जब पिता को 100 रुपए देने तो किस बालक के हाथ में देंगे? स्वाभाविक है जिसने सदुपयोग किया, जितना प्रदान किया गया उसको भगवान अधिक प्रदान करे, उसको पिता अधिक प्रदान करता है। तो ऐसे ही भगवान जीव को जब कुछ प्रदान करते हैं, सर्वप्रथम भाव होता है कृतज्ञता, कि भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, कि भगवान जो प्रदान किए, और उस कृतज्ञता के भाव के साथ, कृतज्ञता का भाव कब आता है तो वहां पर पुनः वर्णन किया गया है कि वास्तविक जब आपको प्राप्त हो कुछ तो स्वयं को सदैव अयोग्य समझे। जब दैन्य भाव होता है तो वास्तविक जिस तरह से श्रील भक्ति ठाकुर भी कहते, योग्यता विचारे किछु नाही पाय तुमार करुणा सार। कृतज्ञता आती कहाँ है? तो प्रथम है कि वास्तविक जब दीन भाव हो, दीन भाव मतलब वास्तविक मैं किसी योग्य नहीं हूं, जो कुछ मुझे प्रदान किया जा रहा है। जिस तरह उस दिन मैं कह रहा था कि किसी भक्त को भी समझो प्रसाद वितरण चल रहा है और सभी भक्त वहां पर बैठे हैं और फिर दयाल गौरांग प्रभु जी प्रसाद सर्व कर रहे, मान लीजिए शुद्ध प्रभु ने सामने रखा हुआ है ग्लास और उनके बगल में श्री गोविंद प्रभु है जिन्होंने केवल एक चम्मच रखा हुआ है, मान लीजिए ये द्रोण समझ लीजिए, और दयाल गौरांग प्रभु के पास है आम रस बकेट भर के जिनको सर्व करना है। शुद्ध प्रभु के पास ग्लास था तो उन्होंने अपेक्षा ये रखी कि मुझे ग्लास भर के आमरस मिलना चाहिए। श्री गोविंद प्रभु के पास एक द्रोण था तो उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे द्रोण भर के आमरस, शुगर है ऑलरेडी, अभी चेकअप किया है तो बढ़ सकता है, तो बस द्रोण भर से काम चला लेंगे। अब आए दयाल गौरांग प्रभु, दयाल गौरांग प्रभु ने श्रुद्ध प्रभु की अपेक्षा थी एक ग्लास आमरस मिलना चाहिए, उनको एक चम्मच केवल इतना सा ही, जैसे एकदम चुल्लू भर एकदम आचमन, जैसे आप चरणामृत लेते केवल इतना ही आमरस मिला। अब कल्पना कीजिए कि श्रुद्ध प्रभु तो दिव्य अवस्था में रहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर है, परंतु हम जैसा कि भक्त हो तो स्वाभाविक आशा की थी एक ग्लास भर के आमरस की और मिल गया इतना सा चरणामृत, इतना तो क्या होगा, सच क्रोध आ जाएगा। अब दूसरी तरफ श्री गोविंद प्रभु वहां पर थे जिनको आशा थी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया कि मैं तो इस आमरस के काबिल ही नहीं, क्योंकि अब मुझे जिस तरह के शरीर की अस्वस्थता है तो मुझे लेना नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा द्रोण भर मिल जाए तो भी काफी है, और आशा थी द्रोण भर की, और दयाल गौरांग प्रभु के मन में इतना उदार भाव आ गया कि उनकी पूरी थाली आमरस से भर दी, कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था, पर तो इतना अधिक मिल गया। तो आप जब अपने आप की जो आपकी आशा रहती है, जब आप समझते कि बहुत अधिक आपको प्राप्त हो और थोड़ा सा प्राप्त हो जाए तो सहज मन में सदैव नकारात्मक भावना आती है, परंतु जब आप में दीनता आ जाती है कि मैं योग्य नहीं हूं वास्तविक कुछ भी प्राप्त होने, कुछ भी मुझे गए, जिस तरह से अक्रूर जी भी वृंदावन की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे तो वहां पर वो कहे कि वास्तविक मेरी तो योग्यता थी नहीं कि मैं श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा भी हो पाऊं, श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊं, यह योग्यता नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण का अनुग्रह है। कल भी हम कह देते, कल संध्या को जब चर्चा हो रही थी राम कथा में तो वहां पर इस बात को हम कह दिए थे, केवट कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया, क्या अवसर मिला था, केवल जल से राम जी के चरणों को धोने को मिला, तो बोले कि यह तो मेरी असंख्य जन्मों का फल है कि भगवान की कृपा हो गई कि आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। तो भागवत में भी दशम स्कंद में बात को है, पुंस अति अनुग्रह एष भवद्भिर्य नियुज्यते, अति अनुग्रह जब भगवान करते हैं, मतलब भगवान की कृपा होती, कृपा शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपा किसे कहते हैं, कृपा को परम पूज्य राधा महाराज, कृपा मतलब मर्सी, मर्सी का मतलब क्या है, मर्सी शब्द का अर्थ होता है जैसे कोई अगर धनी व्यक्ति है वो अगर किसी निर्धन एक भिक्षुक एक भिखारी के समक्ष जाता है और भिक्षुक को यदि 100 रुपए दे दे तो क्या कहेंगे, उसको स्वाभाविक कृपा कहेंगे। परंतु वही वो धनी व्यक्ति उसके घर में एक व्यक्ति काम करने आता है और काम करता है और उसके बदले में 100 रुपए देते हैं, तो धनी व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों को 100 रुपए दिए तो एक को क्या कहा जाएगा, एक को कहा जाता है मजूरी और दूसरे को कहा जाता है कृपा। क्यों, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं था। जब आप कुछ भी ना करे और कुछ भी ना करते हुए आपकी अपेक्षा से अधिक आपको प्राप्त हो जाए तो उसको कृपा कहा जाता है। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि कृपा की परिभाषा क्या है, मर्सी मीन्स यू गेट वॉट यू डोंट डिजर्व। महाराज इस बात को है कि आप जिसके लायक ही नहीं है वो जब आपको प्राप्त हो जाए तो उसको कृपा कहा जाता है। तो जब आप में यह भाव हो अपने जीवन में जो भी परिस्थिति जो वस्तुएं जो भी वातावरण हमें प्रदान किया गया वास्तविक इसके योग्य हम नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के अत्यंत अनुग्रह है कि यह हमें प्रदान किए, तो जब यह आप स्वयं को अयोग्य मानकर उसे ग्रहण करते तो अयोग्यता दीनता का एक तुरंत परिणाम होता है कि कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता से जब हृदय भरा हो तो उसका परिणाम तीसरा होता है कि सहज संतुष्टि होती है, और जब संतुष्टि हो तो उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है यदृच्छ लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्य तत् संतोषात दंभ सेवाशु शिक्षिणा। इसका अर्थ आठ उन्नीस जिस प्रकार तो यहां पर बतलाएगा कि यह जो गुण है, अच्छा मैं अगला श्लोक छूट गया, दैवा लब्धेन संतोष आत्मविच चरण अर्चनम, ये 2 शब्द को मैं पढ़ा था अभी तो उस पर भी स्मरण हो गया ये कि दैव मतलब भगवान के अनुग्रह से लब्धेन जो प्राप्त होता है संतोष, यदि संतुष्टि यह गुण हो आपकी साधना में आपके साधक जीवन में जब संतुष्टि या गुण हो तो उसका परिणाम क्या होता है, तेज विप्रस्य वर्धते, आध्यात्मिक शक्ति नित्य प्रति वर्धन होती जाती है, वर्धित होती जाती है जितना आप संतुष्ट रहते हैं। जो कुछ श्री कृष्ण जिसको एक संत कहते हुए ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, इसको पूर्ण शरणागति का प्रथम सोपान कहा गया है कि श्री कृष्ण जो कुछ हमारे जीवन में करते हैं उसे हम कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। सहर्ष सोई मोहि भावे, भावे मतलब उसको हर्षित होकर हम स्वीकार कर लेते, अंगीकार जब जीवन में कर ले तो फिर क्या होता है उसका परिणाम, दूसरी लाइन क्या है, जो ही जो ही प्यारो करे सोई भावे, जो ही मोहि भावे सोई करे प्यारो, कि जब आप श्री कृष्ण के अनुकूल होना प्रारंभ कर देते हैं, जब गुरु साधु के अनुकूल होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, श्री कृष्ण आपके अनुकूल होने लगते हैं। जब एक शुद्ध भक्त भगवान को पूर्णतः समर्पित भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कार्य करना प्रारंभ करने लगे हैं, जिसको कहा गया है कल भी मैं प्रातः जब चर्चा करे तत्सुख सुखित्वम कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के आह्लाद के लिए जब चेष्टाएं की जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, फिर कृष्ण उस व्यक्ति के आह्लाद का विचार करते हैं। तो यह गुण जब हो तो भक्ति मन जिसको यहां पर प्रसन्न याति सत्पथम, मन प्रसन्न होता है और सहज फिर भगवान की ओर चलने लगता है। तो फिर इसलिए पहला है कि स्वधर्म आचरण, फिर दूसरा बताया गया विधर्म निवर्तनम, तीसरा बताया गया संतुष्टि जीवन में हो जो दैन्य और कृतज्ञता, ये 2 जब गुण हो तो फिर उसका परिणाम होता है जीवन में संतुष्टि होती है। अकृतज्ञ जो व्यक्ति होता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अकृतज्ञ व्यक्ति का एक स्वभाव होता है हमेशा कंप्लेन कर देता है, हाय 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 ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। उसे संसार किसी परिस्थिति में रखा जाए तो वो सुस्त नहीं गाड़ी में। जैसे कल हम निकल गए तो लंबा सफर था परतवाड़ा को, बीच में फिर बहुत एक्सीडेंट हो गया तो अचानक रास्ता भी बदलना पड़ा। तो लंबा सफर मतलब रास्ता जब बढ़ गया तो फिर तुरंत श्रीमान को अभी आवश्यक है पेट्रोल अगर नहीं डालेंगे तो गाड़ी आगे चलने वाली है नहीं, तो फिर डालना पड़ा उसमें। तो वाहन के लिए जैसे ईंधन क्या कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल ही कहते हैं, ठीक है, पेट्रोल आवश्यक होता है। वैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते आध्यात्मिक जीवन का पेट्रोल है कृतज्ञता। कृतज्ञता है जो आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखती है, और कृतज्ञता न हो तो आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से आपका जिस तरह से इमारत ढह जाती है भूकंप आदि आने से, वैसे आध्यात्मिक जीवन भी वह धारण नहीं कर पाते हैं यदि कृतज्ञता न हो तो। तो ऐसा जब दैन्य कृतज्ञता से युक्त हो तो संतुष्टि आती है, और संतुष्टि आने के बाद आत्मवित चरण अर्चनम, वह शब्द ठीक है, समय तो लगभग हो गया यार, ये श्लोक छूट गया है, चर्चा इस पे करने वाला था, कल ये शब्द देखा था, ग्राम्य धर्म निवृत्त मोक्ष धर्म रति मीत मेध्याधनम शश्वत। तो उसके पूर्व है आत्मविद चरणम, आत्मविद जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है मतलब जिन्होंने भगवत अनुभूति जीवन में की है, चरण अर्चनम जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे आचार्य उपासनम, श्रीमद भागवत में कहे क्या है आचार्य माम विजानियम नाव मन्यत करिचित नमर्त बुद्धि सुयत सर्व देवमयो गुरु, इन शब्दों में जो भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहे। तो जब ऐसे साधु संत जो भगवत अनुभूति जो प्राप्त की है ऐसों के चरणों की अर्चना, ऐसे चरणों अर्चना मतलब वास्ते ऐसे साधु संत, कोई ऐसा साधु संत हमारे जीवन में हो जो भगवत अनुभूति किया है, जिसके प्रति भगवत भाव हमारा है, साक्षात भगवान का प्रतिनिधि, यह जब हम स्वीकार करें। और अर्चना मतलब अपने आप को समर्पित करें, अर्चना मतलब कोई धूप दीप आदि की अर्चना नहीं होती है, जिस तरह से वो भजन में हम गाते हैं क्या है मम मन मंदिरे रहो निश दिन श्री कृष्ण मुरारी, तो वहां पर क्या शब्द है भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो ए नियो चितो नंदन, क्या है शब्द आगे शायद वही है, हाँ प्रेम प्रदीपे आरती तो मार, तो वहां पर भी कहा जाता है ये प्रेम है भक्ति है समर्पण है वास्तविक, इसके द्वारा आरती की जाती है। तो गुरु का वास्तविक आराधना मतलब गुरु का फोटो रखकर हम आराधना करें वही आराधना नहीं होती है। जब गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया जाए तो वास्तविक अर्चना है, सम्यक रूप से अच्छी तरह अर्चना होती है। तो यह जब किया जाए तो मन प्रसन्न होने लगता है, और फिर आगे के अंगों का वर्णन किया गया। तो ये अब विषय तो रह गया जिसको मैं मित मेध्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, इस शब्द पर ठीक कल ही चर्चा कर लेंगे, अभी तो इसे समय का अभाव है। किसी को टीका टिप्पणी हो श्लोक पर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिल प्रपाद की ताई।